मानुष जन्म कदारथ होई, मानुष जन्म कदारथ होई,
मानुष जन्म कदारथ होई, मानुष जन्म कदारथ होई।
सत संपत हरि नाम परोई, सत संपत हरि नाम परोई,
सत संपत हरि नाम परोई, सत संपत हरि नाम परोई।
औगन तेरे सकल निवारी, औगन तेरे सकल निवारी,
औगन तेरे सगन निवारी, औगन तेरे सकल निवारी।
भज परमेश्वर कृपा धारी, भज परमेश्वर कृपा धारी,
भज परमेश्वर कृपा धारी, भज परमेश्वर कृपा धारी।
साची सीख मन माही विचार, साची सीख मन माही विचार,
साची सीख मन माही विचार, साची सीख मन माही विचार।
जग जीवन के बल दिन चार, जग जीवन के बल दिन चार,
जग जीवन के बल दिन चार, जग जीवन के बल दिन चार।
लाभ कमाओ जग आवन मीत, लाभ कमाओ जग आवन मीत,
नाम कमाओ जग आवन मीत, नाम कमाओ जग आवन मीत।
भज करतार परम सुख रीत, भज करतार परम सुख रीत,
भज करतार परम सुख रीत, भज करतार परम सुख रीत।
सत साधु की प्रीत विचार, सत साधु की प्रीत विचार,
सत साधु की प्रीत विचार, सत साधु की प्रीत विचार।
पावे आनंद मोक्ष द्वार, पावे आनंद मोक्ष द्वार,
पावे आनंद मोक्ष द्वार, पावे आनंद मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार।
थोड़ी सी वाणी है आपके सामने, इसको श्रवण करें, फिर इस पर विचार होगा।
हर दर्जी का महरम पाए, आवागमन का संता जाए, पांच तत् गुण तीन का चोला, करम सूत से सीवे निरोला, नौ दस मास जीवन में लागा, नाना रंग बिच रंगे स्वांगा, अजब चोले की बंत बनाई, लखी ना जाए साहब प्रभताई, पवन गाठ सहज बन आई, नौ द्वार का कोट बनाई, जर जर होया ये चोला पुराना, संग सखा सब भयो बिगाना, जन्म जन्म मैल चित धारी, सुघड़ सुजान कोई मैल उतारी, नाम का साबन प्रेम का नीरा, ध्यान शिलाधर धीवे धोवे मत धीरा, सत विचार की चोट लगावे, दुर्मत मैल जन्म की बहावे, माटी का ये चोला बनिया, जो कारी गर्दी मर्जी, मंगत चोला अमर तब होवे, जब सतगुर भेंटे दर्जी, माटी का ये चोला बनिया, जो कारी गर्दी मर्जी, मंगत चोला अमर तब होवे, जब सतगुर भेंटे दर्जी।
हर दर्जी का महरम पाए, आवागमन का संसा जाए। हर अर्थात प्रभु रूप जो दर्जी हैं, उनकी कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो ये आवागमन का संशय जो है, संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और जो जीवन मिला जीने के लिए उसमें संसारी सुख की तलाश करना, ये जीव का संशय है। जहां जीव को बेचैनी मिल रही है, जहां जीव को बुढ़ापा और मौत मिल रही है, उसी में ही वो सुख की तलाश कर रहा है। इसलिए ये संशय जो है, ये तभी जा सकता है जब वो प्रभु हैं जिन्होंने इस चोले को की सिलाई करी, जिसको तैयार किया, जो हम जो चोला, ये शरीर रूप का चोला जीव के ऊपर चढ़ा हुआ है, कहते हैं उस प्रभु की यदि कृपा हो जाए तब ये आवागमन का, जन्म मरण का जो सिलसिला है ये बंद हो जाता है। अब वो कैसा चोला बनाया है प्रभु ने, कहते हैं पांच तत्व गुण तीन का चोला, कर्म सूत से सीवे निरोला। पांच तत्व हम सब जानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व का ये शरीर बना है और पांच तत्व का ही संसार बना है। लेकिन शरीर में केवल पांच तत्व नहीं है, पांच तत्व के पांच तन्मात्राएं होती हैं। जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, और जो जल है उसकी तन्मात्रा रस है, और जो पृथ्वी है उसकी तन्मात्रा गंध है। तो ये पांच जो तन्मात्राएं हैं, इनके अनुभव के लिए प्रभु ने इस शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां प्रदान कर दी। हम सब जानते हैं कि आंख देखने का काम करती है, त्वचा स्पर्श का काम करती है, जिभ रस का काम करती है, कान जो है वो सुनने का कार्य करते हैं, और इस प्रकार जो है ये सारा जो है सिलसिला, और जो पृथ्वी है ये गंध का काम करती है, जो नासिका सुनती है। ये पांच तत्व तो हैं, उनकी पांच तन्मात्रा हैं, उनके पांच जो है ज्ञानेन्द्रियां हमको दिए हैं, जो इन तत्वों के सूक्ष्म चीजों का अनुभव करती है। अब बताइए, कोई मनुष्य ऐसा चोला तैयार कर सकता है? और साथ में तीन गुण भी हैं प्रभु, जिसको हम कहते हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। जितने भी जीव संसार में नजर आते हैं उसमें कोई ना कोई गुण प्रधान होता है। किसी का सत्व गुण प्रधान होता है, किसी का रजोगुण प्रधान होता है, किसी का तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुणी जीव बड़े पाप करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। रजोगुणी जीव बड़ी माया इकट्ठी करते हैं, बड़े साजो सामान इकट्ठे करते हैं, बड़े भोग विलास करते हैं। और सतोगुणी जीव जो है वो प्रभु की भक्ति करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं। तो ये जीव के गुण हैं, जिनको हम कहते हैं बुद्धि के गुण हैं। तो बुद्धि जो है इसमें ये तीन गुण होते हैं, और जो गुण प्रधान होता है हम कहते हैं ये मनुष्य सतोगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है, या पापी है। तो ये तीन गुण और पांच तत्व के भोग विलास, लेकिन पांच तत्व के पांच विकार भी हैं साथ में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब अहंकार है ये आकाश का गुण है, पांच तत्व है, पांच के विकार भी। अहंकार जो है आकाश का गुण है, और लोभ जो है वो वायु का गुण है, या वायु का विकार है, और क्रोध जो है वो अग्नि का विकार है, और उसी प्रकार जल का विकार काम है, और पृथ्वी का जो विकार है वो मोह है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांच विकार भी हैं, और ये पांच तत्व भी। तो पांच तत्व का सारा संबंध देखिए हमारे पूरे शरीर से है, और इसमें हर चीज का हम अनुभव कर रहे हैं, और पाप के रूप में, पुण्य के रूप में, सत्कर्म के रूप में इसी शरीर का हम प्रयोग कर रहे हैं। इसी शरीर में ईश्वर भी मौजूद है। कैसा चोला है प्रभु ने इस चोले का कैसा निर्माण किया है कि इस चोले को बना के खुद उसमें निवास भी कर रहा है। अब जीव की मर्जी है, ये पांच तत्वों के शरीर का संसार में भोग विलास करके वो पांच विकार इकट्ठे कर ले, या गुरु की बात समझ के, वाणी की बात समझ के, इस अंदर अंतर्यामी ईश्वर की, जिन्होंने ये चोला बनाया है, उसकी भक्ति कर ले, तो उसमें आनंद है, उसमें मोक्ष है, उसमें चैन है। लेकिन यदि संसारी बन गए हम दूसरों की नकल करके, गुरु हमारा कोई है नहीं, गुरु की हम सुनते ही नहीं है, तो फिर पछताना ही पड़ता है। पूरा जन्म आपका बेचैनी लेकर बीत जाता है, कर्म आप बहुत करते हो, परिवार की सेवा भी बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन सत्य यह है कि आपका जो नेट रिजल्ट है जीवन का वो बेचैन। इसीलिए वाणी आपको ये विज्ञान भी समझा रही था। देखिए पांच तत्व गुण तीन का चोला कर्म सूत से सीवे निरोला। निरोला का मतलब है निराला से। तो कर्म सूत से इसको शरीर को तैयार किया गया, अर्थात ये शरीर जब पैदा होता है तो इससे कौन से कर्म होंगे? देह से तो कर्म होते हैं ना, तो कर्म जो है वो प्रारब्ध के अधीन होते हैं। तो आपका शरीर इसी प्रकार से बनाया गया है ताकि वो कर्म करने में ये सक्षम हो जाए जो प्रारब्ध के अनुसार इस देह को करने हैं या देह से होंगे। तो अब बताइए, शरीर करके तो प्रभु ने मुझको बिल्कुल मजबूर कर दिया कि वो कर्म इस शरीर के द्वारा होंगे ही जो प्रभु ने प्रारब्ध करके इसके साथ बांध दिए। अब जीव की मर्जी है कि यदि वो अपने आप को शरीर समझता है तो गुलाम हो गया प्रभु। जो कर्म प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं उसका वो कर्ता बन जाता है और उसका फिर भोक्ता बन जाता है। तो मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला था, शरीर करके तो वो पराधीन ही है, लेकिन जीव बुद्धि करके स्वतंत्र है। इस बुद्धि के निश्चय को या शरीर में जोड़ दे या वो कर्ता से प्रभु से जोड़ दे, इसमें वो स्वतंत्र है। तो इसलिए सत्पुरुष जब संसार में आते हैं प्रभु इस चोले की ही तैयारी नहीं करते हैं, इस जीव के मुक्ति के लिए, इस जीव के आनंद के लिए, इस जीव के जीव को शांति प्रदान करने के लिए वो गुरु रूप में भी तो अवतार लेते हैं, गुरु का चोला भी तो वो धारण करते हैं। तो जब मैं गुरु की बात सुनने की कोशिश करता हूँ, गुरु को जीवन में अपनाता हूँ, तब जो है फिर मेरा जो रास्ता है चलने का संसार में वो ठीक हो जाता है। कहते हैं 9-10 मास सीवन में लागा, नाना रंग बिच रंगे सुहांगा। 9-10 माह में हम सब जानते हैं कि बालक जो है गर्भ में तैयार होता है, तो अंदर चोला कौन तैयार कर रहा है? प्रभु ही उसका चोला तैयार कर रहे हैं। और अजब चोले की बंत बनाई, लखी ना जाए साहब प्रभुताई। डॉक्टर भी दंग रह जाते हैं कि एक छोटे से सेल से लेकर और इतने बड़े शरीर तक कैसे रचना बनती है, कैसे सारे सिस्टम काम करते हैं, कि आज तक कितने युग बीत गए लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर्स साइंटिस्ट इस शरीर के का पूरा रहस्य आज तक नहीं जान सके। ऐसा चोला है। तो फिर ऐसे चोले की उन्होंने बनावट तो बना दी उन्होंने, ये आगे कह कर रहे हैं कि पवन गांठ सहज बनाई, 9 द्वार का कोट बनाई। फिर इसके अंदर क्या कह रहा उन्होंने? पवन गांठ अर्थात प्राण का प्रवेश करा दिया, बिना प्राण के शरीर नहीं चलता। प्राण वायु से इस शरीर का संचालन हो रहा है और 9 द्वार बना दिए इसमें। 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंख के द्वार हैं, 2 कान के द्वार हैं, 2 नाचिका के द्वार है, 1 मुंह का द्वार है, 1 मलमूत्र विसर्जन के द्वार है। ये 9 द्वार है। और 10वां द्वार हम सब जानते हैं कि वो कपाल है, जो मोक्ष द्वार है, जो वो भी इसी शरीर के अंदर है, वो प्रभु का निवास स्थान है जहां जीव की प्रभु से भेंट होती है। तो देखिए ये कैसा विलक्षण चोला है कि भोग विलास के द्वार भी इसी शरीर में है और मोक्ष का द्वार भी इस शरीर के अंदर। मैं यानी जीव भी इस शरीर में निवास करता हूं और प्रभु भी इस देह के रचनाकार, वो भी इस चोले के अंदर निवास करते हैं। तो यदि मेरे अंदर सतबुद्धि आ जाए तो विचार करिए कि मैं क्या कौन सा रास्ता चुनूंगा। तो बुद्धि का निर्णय जब शुद्ध हो जाता है तब मनुष्य का जीवन फिर सफल होता है, क्योंकि वो उस 10वें द्वार पर पहुंचने की कोशिश करता है जहां सारे भोगों से, सारे पापों से, सारे बंधनों से इस देह के अंदर रहते रहते उसका छुटकारा हो जाता है। आगे कहते हैं, जड़ जड़ होया ये चोला पुराना, संग सखा सब भयो बिगाना। धीरे धीरे हम जानते हैं ये देह नाश होने लगती है, बढ़ापा आ जाता है और ये चोला जो है पुराना हो जाता है, जैसे कपड़ा पुराना होकर फट जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर फिर रोगी हो जाता है। संग सखा सब भयो बेगाना, तो जो इस जवानी के वक्त इसके संगी साथी बने सुख भोगने के लिए, मित्र बनाने के लिए, वो तो सब जो है वो बेगाने हो जाते हैं, सब एक एक करके आपको छोड़ने लगते हैं। जन्म जन्म मैल चित धारी सुघल सुजान कोई मैल होता, तो हर जन्म मेरा जब होता है नया शरीर मिलता है, कहते हैं मैल चित धारी, मैं अपने मन के अंदर मैल इकट्ठा करता रहता हूं। मैल क्या है? वो वासना का, इच्छाओं का, भोग विलास, संसारी सुख प्राप्ति का। तो जिसमें हम सुख तलाश कर रहे हैं उसका यही विज्ञान कह रहा है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच तत्व तो ये पांच विकार है। इसलिए संसार में अपने आप को शरीर समझकर जो कुछ भी कर्म करेगा वो तेरे ये पांच विकार इकट्ठे मन में होते चले, इसलिए इसको मैल वाणी कह रही है। जन्म जन्म मैल चित धर सुगण सुझान कोई मैल उतार, कोई ऐसा व्यक्ति होश में संसार में आता है जो इस मैल को उतारने की कोशिश करता है। तो मनुष्य जन्म मिला था, कितने जन्मों में जो हमने मैल इकट्ठे किए हैं ये पांच विकार के, मनुष्य जन्म में सदगुरु जीवन में धारण करके शास्त्रों के मर्म को समझकर मैं इस मैल को उतारने के लिए मानव जीवन व्यतीत करता हूं, अर्थात वो वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करता हूं जिसमें काम क्रोध लोभ मोह ये पांच विकार निरंतर मेरे कम होते रहते, पर एक दिन ऐसा हो जाता आ जाता है मेरे जीवन में ये पांच विकार परमानेंट मेरा पीछा छोड़ देते। तो ये मनुष्य जन्म का ये सुख था, ये शांति थी, ये आनंद था, लेकिन मैंने बेचैनी का रास्ता चुना अज्ञानियों का संग करके और सतमार्ग को मैंने नहीं अपनाया, तो कैसे काम होगा? वो कह रहे हैं कि नाम का साबन प्रेम का नीरा ध्यान सिला धर धोवे मत धीरा। जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वो क्या करता है कि नाम का साबन, प्रभु नाम का सिमरन करता है, तो प्रभु नाम क्या करता है कि मन के जो मैल है वो उसको मिटा देता है, अर्थात उसका लेकिन कपड़े में यदि आप साबुन लगाइए तो कपड़ा जो है मैल को छोड़ देता है, मैल ढीला हो जाता है। और प्रेम का नीरा, और प्रेम रूपी जल में वो मैल जो है फिर वो कपड़े से अलग हो जाता है। ध्यान सिला धर धोबे मद नीरा, ध्यान क्या है? ये एकाग्रता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाती है सिमरन की कि आपका ध्यान जो है या आपका जो मन है वो एक चित्त हो जाता है, लगातार प्रभु में लगा ही रहता है। तो ये जो है नाम का साबन प्रेम का नीरा, प्रेम रूपी जो पानी है, जल है, और ध्यान रूपी जो एकाग्रता है उसके साथ जब नाम का साबुन है, ये तीनों मिलकर जो है वो मन को शुद्ध कर देते हैं, मन को निर्मल कर देते हैं। सत विचार की चोट लगावे दुर्मत मैल जन्म की बहा, और फिर सत विचार की निरंतर इस मन को चोट मिलती रहती है, अर्थात बुद्धि के अंदर सत विचार जब लगातार चलता है तो मन की वासना पर काबू करने में बुद्धि समर्थ हो जाती है, जीव सफल हो जाता है। इसीलिए ये सारा विज्ञान है कि किस प्रकार प्रभु मेरा ये चोला तैयार करते हैं और किस वास्ते ये चोला उन्होंने इतना महंगा चोला, इतना अनमोल चोला मुझको मानव के रूप में दिया है, तो इसका मैंने क्या उपयोग करना था वो भी बता रहे हैं, क्या मैं दुरुपयोग करता हूँ वो भी बता रहे हैं। तो वाणी छोटी सी है लेकिन सारा विज्ञान छोटी सी वाणी में मेरे बारे में दिया हुआ है। माटी का ये चोला बनेहा ज्यो कारी गर्दी मर्जी, मंगत चोला अमर तब होवे जब सतगुरु भेंटे दर्जी। ये मट्टी का चोला इसलिए कहा गया कि जिसका ये संसार बना है, जिसकी ये जमीन बनी है, जिसकी ये बाहर की प्रकृति बनी है, उसी माटी का ये शरीर भी बना। तो जैसी कारीगर अर्थात जैसी प्रभु की मर्जी थी, उनकी मर्जी क्या है? जैसा मेरा कर्म होता है, जैसा मैं स्वभाव तैयार करता हूं, जैसी मैं अपने मन के अंदर वासना तैयार करता हूं, और उसको लेकर जब ये चोला छोड़ता हूँ तो नया चोला जब बनाता है प्रभु तो मेरे इस कर्म फल के अनुसार ही वो चोला तैयार करता है, मेरे विकारों के अनुसार ही वो ये चोला तैयार करता है। उस जो कुछ ही कमाई इस जन्म में मैंने विकारों के रूप में की या गुणों के रूप में की, वो सारी की सारी कमाई वो प्रभु अपनी मर्जी से जो है, मर्जी क्यों, क्योंकि प्रारब्ध कौन सा मुझको इस जन्म में भोगने को मिलेगा वो मैं डिसाइड नहीं करता, वो प्रभु ही डिसाइड करते हैं। इसलिए वो प्रभु की मर्जी चलती है, मुझे कैसा प्रारब्ध मिलेगा, कर्म फल मेरा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो मैंने कर्म कब किया था और कब मैं उसका फल भोग रहा हूं, लेकिन प्रभु को सब पता है, इसलिए वो तेरे साथ 100% न्याय ही करते हैं। तो मनुष्य जन्म जब देते हैं तो इसीलिए वो गुरु बनकर भी आते हैं, वाणी भी प्रकट करते हैं। ये वाणी किसने प्रकट की, महाजी खुद कहते थे प्रेमी इन्होंने वाणी नहीं लिखी है, तो वाणी आती थी तो भगत जी भी जब नोट करते थे तो महाराजी उस समय समाधि में होते थे, और जब करक्षण अगले दिन महाराजी करवाते थे उसके बाद सुनते थे बनारसी वाणी पढ़ के सुना कि प्रभु की क्या मर्जी हुई, प्रभु की क्या कृपा। तो देखो वो प्रभु अंतर्यामी मेरे लिए वाणी भी प्रकट कर रहे हैं, वो मेरे लिए गुरु बनकर भी आ रहे हैं। अब हम यहां बैठे हैं तो आश्रम किसकी मर्जी से बनाए, किसकी देन है, ये प्रभु की ही देन है। जिन प्रेमियों के मन के अंदर प्रभु की भक्ति थी, प्रभु का प्रेम था, उन्होंने ही त्याग करके ये आश्रम तैयार किया, तो किसकी कृपा से बना, प्रभु के नाम से ही बना, प्रभु कृपा से ही बना। पर आज इन सत्विचारों का फायदा यहां बैठकर हम उठा रहे हैं, तो इसीलिए प्रभु के साथ जब जुड़ जाते हैं तो हमारा यही संसार है, लेकिन कैसा हो जाता है, कितना सुंदर संसार होता है। इसी संसार में इसी शहर में ये स्थान मौजूद है जो हमको शांति देता है, जो हमको ज्ञान देता है, जो हमको प्रेम देता है, जो हमको निष्काम सेवा के लिए प्रेरित करता है, जहां आकर जहां ज्ञान सुनकर हम अपने को भाग्यशाली महसूस करते हैं। तो बताइए ये भी तो इसी संसार में, तो इसलिए जो मनुष्य भी प्रभु से जुड़ जाता है उसका जीवन किस प्रकार से सुंदर हो जाता है, किस प्रकार से दूसरों को शांति देने वाला हो जाता है। तो संसार यही रहता है, शरीर भी ऐसे ही रहते हैं 5 तत्व के, लेकिन स्वभाव हमारे बदल जाते हैं। तो ये जो स्वभाव है जो हमको प्रभु से जोड़ता है इसी को सतोगुणी स्वभाव कहते हैं। तो धीरे धीरे तमोगुण हमारे अंदर जीवन में कम होता रहता है, रजोगुण कम होता रहता है और सतोगुण की वृद्धि होती रहती है, और मानव जन्म की यही कमाई है। इस जन्म में मुझको मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्रक्रिया लंबी है, संस्कार की शुद्धि में वक्त लगता है, इसलिए मेहनत आपको लगातार करनी पड़ती है। जिसका संसार में लगातार मेहनत करते हो उसी प्रकार करतार के मार्ग पर भी चलने में लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये वो कमाई है जब कर लेते हो तो आपको कितना चैन देती है और आपके साथ जो रहने वाले उनको भी कितना चैन देती है ये आपको पता होता है। इसीलिए कमाई वो करो जो आपको शांति दे और दूसरों को भी शांति दे। अंत में कह रहे हैं कि मंगत चोला अमर तब होवे जब सतगुरु भेंटे दर्द। तो सतगुरु रूपी दर्जी से जब जीव की भेंट होती है तब ये चोला अमर जाता है। कोई कहता है कि महात्मा मंगत राम जी मर गए, कोई कहता है ऐसा, क्यों मर गया, शरीर तो मर गया, जिसका नाम मंगत था वो तो मर गया, लेकिन चोला अमर कैसे हो गया, मंगत राम अमर हो गया, वाणी में आ गया। तो मंगत नाम अमर हो गया अर्थात मंगत जो है वो उस चोले को का बयान कर रहा है कि उस चोले में रहकर मंगत ने क्या किया कि उस प्रभु की प्राप्ति, वो प्रभु ही हो गए। तो प्रभु क्योंकि अमर है इसलिए कहा जा रहा है कि चोला अमर तब होवे जब सतगुरु भेंटे दर्द। तो ऐसे सतगुरु पर जब हमारा विश्वास आता है, उसकी वाणी उसके वचन उसके जीवन को से को जानकर हम उससे प्रेरणा लेते हैं और उसी मार्ग को अपनाते हैं जीवन में जिसके लिए वो प्रेरित हमको कर रहा है, तब हमारा भी एक दिन चूल्हा अमर रहता है, अर्थात मैं भी इस बंधन जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता हूँ और हमेशा के लिए तृप्त हो जाता हूँ, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम्।